Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, हम सब की हार्दिक इच्छा होती है कि भगवान जी हमारे घर में पधारें। वैसे एक व्यक्ति था, उसकी भी बड़ी दिली तमन्ना थी कि भगवान उसके घर में आए। तो एक दिन जब वो सोया हुआ था, भगवान जी सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर में तो आ सकता हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे घर में कितनी गंदगी है, अस्वच्छता है, पहले अपने घर की सफाई तो करो। उस व्यक्ति ने दूसरे दिन उठ के घर की सफाई की, लेकिन कचरे अपने घर में ही रख दिए किनारे दबा के, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा था। भगवान जी फिर से सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुमने सफाई तो कर दी, लेकिन कचरे तो यहीं दबा के रख दिए हैं, उनसे बदबू आ रही है, मैं यहाँ नहीं आ सकता। वो फिर से उठा दूसरे दिन, उसने सारे कचरे निकाले और अपने घर के बाहर रख दिए, फेंक दिए दरवाजे के पास। फिर से भगवान जी सपने में आए, बोले दरवाजे में ही कचरा रखा हुआ है, मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ। अब उस व्यक्ति ने दूसरे दिन उठ के वो सारे कचरे उठाए, अपने पड़ोसी की तरफ फेंक दिए। जब वो सोया तो भगवान जी फिर सपने में आए और देखा उस व्यक्ति ने कि भगवान जी उसके घर में नहीं आए हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में आ गए हैं। उस व्यक्ति ने सपने में ही पूछा कि भगवान जी, मैंने इतनी मेहनत की, आप मेरे घर में आने की बजाय पड़ोसी के घर में क्यों चले गए? भगवान जी ने कहा, जरा तुम बाहर निकल के देखो उसने क्या किया है। जब बाहर निकल के इसने देखा तो उस पड़ोसी ने उस कचरे को, अपने घर के भी कचरे को और इसने जो कचरा फेंका था उसे भी उठा के कूड़ेदान में डाल दिया था। इस व्यक्ति की आंखें खुल गई कि हमें साफ सफाई न केवल अपने घर में रखना है, बल्कि आसपास में भी सफाई रखनी है। और जहाँ स्वच्छता है वहीं परमात्मा का वास होता है, वहीं परमात्मा का आगमन भी होता है। इसीलिए सारे देश में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो न केवल हम बाहर की स्वच्छता का ध्यान रखें, लेकिन आंतरिक स्वच्छता को भी अपनाएं, ताकि परमात्मा न केवल हमारे घर में आए बल्कि हमारे हृदय में भी बस सकें। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
भ्राता जी, पूरे देश में एक सुंदर अभियान चल रहा है साफ सफाई का। इस स्वच्छता के साथ साथ अंदर की स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है?
संपूर्ण रूप से, क्योंकि अगर मनुष्य अंदर की स्वच्छता का अभियान चला दे तो सचमुच उसका जीवन सुख शांति खुशी प्रेम से भरपूर हो जाए। मेरे पास अभी कुछ माताएं मिल रही थी, अपनी अपनी समस्या यही, हम बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता, मैं क्या करूं, मुझे जल्दी आना था। मैंने उसको कहा, दो तीन थी, कि यहाँ बहुत माल भर लिया है, इसको निकालो, इसको स्वच्छ करो तो चित्त शांत हो। लोग कह देते हैं भगवान सब जगह है। अरे भाई, गंदगी में भला भगवान रहेगा क्या? जिसके वास के लिए स्वच्छ दिल की जरूरत है, जिसको याद हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा मन स्वच्छ न हो, पवित्र न हो, वो भला इस गंदगी में रहेगा? मैं पहले लिखा करता था अपने यहाँ एक स्लोगन, जिस भगवान की याद से ही मन आनंदित हो जाता है, वो अगर हमारे अंदर ही होता तो हमारा जीवन कितना आनंद विभोर रहा होता। तो सोचने की बात है, हम सफाई करें। हर एक ने अपने मन में ईर्ष्या भर ली है, दूसरों के अवगुण भर लिए। आपने तो कहानी में सुना है, अपना किचरा दूसरों के घर में डाल लिया
जी।
ये तो चलो एक दूसरी चीज है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों का किचरा अपने घर में जमा कर रहे हैं। अर्थात दूसरों के मन की गंदगी अपने चित्त में रखकर अपने चित्त को अशांत कर रहे हैं। तो प्रभु का वास तो छोड़ो, सुख शांति का वास भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं तो जब ये स्वच्छता अभियान सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट इट, लेकिन मन को स्वच्छ कर दें, क्लीन द माइंड, तो कितना अच्छा अभियान हो जाए सारे देश में। ये कोर्ट केस समाप्त हो जाए, ये रेप केस समाप्त हो जाए, ये करप्शन समाप्त हो जाए, ये घर घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए और जीवन मंदिर बन जाए।
बिल्कुल। तो भ्राता जी, क्या एक जैसे शुरुआत में हम लोगों ने एक सहयोग बैंक की स्थापना की थी और वो बहुत अच्छा चल रहा है, सभी सुबह और शाम योग करके उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, क्या ब्रह्मा कुमारीज की ओर से या समाधान परिवार की ओर से एक ऐसा अभियान शुरुआत किया जाए कि अब अंदर की स्वच्छता हम करें, मन की स्वच्छता अभियान, आंतरिक स्वच्छता अभियान, तो कितना सुंदर हो जाए और सबको प्रेरणा भी प्राप्त होगा।
करना ही है इसको, क्रांति का रूप देना होगा। और हम इस पर चर्चा करेंगे और ये आग्रह करेंगे सभी से कि उन्होंने अपने दिल में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में जो गंदगी समा ली है, निगेटिविटी, बिना मतलब की बातें, तेरी मेरी, जिससे कोई लेना देना नहीं, जो अंदर में गंदगी पैदा करे, जैसे गंदगी का ढेर हो जाए तो बदबू फैलती है ना, ऐसे ही मनुष्य के मन में भी जो गंदगी का ढेर हो गया उससे बदबू फैल रही है, तो उससे मनुष्य सुखी नहीं है, सफल नहीं है, समृद्ध नहीं है, को धन संपदा है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, इसको साफ करना ही पड़ेगा।
प्रताप जी, यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में मैं पांडव भवन में गया हुआ था, तो वहाँ पे जो ओम शांति भवन है, बहुत सुंदर सा पात्र रखा हुआ है, दान पात्र। वैसे मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ जो दान पात्र होते हैं उसमें लोग पैसे डालते हैं, लेकिन ये पात्र मुझे बड़ा ही यूनिक लगा, जिसमें लोग अपनी बुराइयां डाल रहे थे। कोई शराब पीता है तो वो शराब की बुराई डाल रहा था, कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट की बुराई डाल रहा था। तो क्या ऐसे ही पात्र ब्रह्मा कुमारी इसके सभी शहरों में जो सेवा केंद्र हैं वहां पे रखे हुए हैं, जहां व्यक्ति चाहे अपनी इन आंतरिक बुराइयों को डाले और अंदर की सफाई कर ले?
बिल्कुल, हमारे ओम शांति भवन को रोज देखने के लिए कई हजार लोग आते हैं, कभी कभी 10,000 भी आ जाते हैं, 5,000 तो रेगुलर आते हैं, और 500 लोग तो अपना दान करके ही जाते हैं। आज से ये स्वाह करते हैं भगवान के मंदिर में, आज से नहीं हाथ लगाएंगे, माची से, बीड़ी के बंडल और कई कई चीजें, पान दिखाई देते हैं उसमें, ये डाल दिए लोगों ने। ये आजकल जो नई नई चीज निकली ना, गुटखा, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या, वो सब भी डाल के जाते हैं। और हमारे बहुत सारे सेवा केंद्रों में ये व्यवस्था है ही, वहां से बॉक्स रखे रहते हैं और लोगों को प्रेरित किया जाता है कि देखिए, जब तक आप अपनी बुराई का दान नहीं करोगे तब तक आपका जीवन अच्छा नहीं बनेगा। आप इस संसार में जो सुख सुविधाएं आपको मिली हैं उसका आप आनंद भी नहीं ले पाओगे, वो सब रखी रह जाएंगी, आप बेचैन रहोगे, बीमार रहोगे, अशांत रहोगे। तो बहुत लोग हमारे सेंटर्स में भी ये काम करते हैं, और जैसा मैंने कहा, हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि हमारे देश में एक बहुत सुंदर क्रांति जैसी लाई जाए कि सभी लोग अपनी इन बुराइयों का दान करें।
बिल्कुल, एक अभियान सचमुच निकालने की आवश्यकता महसूस हो रही है भ्राता जी। और यदि ब्रह्मा कुमारी जी ये कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा, कोई रथ बनाया जाए जो पूरे भारतवर्ष में जाए और सभी अपने इन बुराइयों का दान करें, तो सचमुच कितनी स्वच्छता हो जाएगी,
बिल्कुल आपका कितना सुंदर होगा, स्वप्न साकार होगा जरूर। क्योंकि हमारे यहाँ यूथ विंग है,
जी जी,
मेडिकल विंग है, वो लोग ऐसे प्रोग्राम करते ही रहते हैं, एक एक दो साल के बाद गांव-गांव में जाकर करते हैं और परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं।
जी जी, कई लोग ये चीजें छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ने का जो मनोबल है वो उनके अंदर नहीं आ पाता है, या फिर कई बार वो छोड़ देते हैं कि आज से भाई मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या शराब नहीं पीऊंगा, या सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन बाद में फिर से वो चीज लेना शुरू कर देते हैं, शायद मनोबल के अभाव के कारण। ये जो शक्ति है अंदर की, वो कैसे आए ताकि सदा के लिए से मुक्त रहें?
आज ही सवेरे की मुलाकात में कई माताएं आई, कम से कम 5, जिनकी समस्या यही थी कि हमारे बच्चे, एक बीटेक कर रहा है, एक सीए फाइनल में है, ऐसे हायर एजुकेशन वाले अपने फ्रेंड्स के बुरे संग में आकर ऐसी किसी बुरी लत के शिकार हो गए। एक माता तो बहुत दुखी थी, मेरा लड़का टॉप मोस्ट स्टूडेंट, अब उसकी सप्लीमेंट्री आती है, मुझे बड़ा कष्ट होता है क्योंकि शराबियों के संग में आके ये धंधा करने लगा है। तो सचमुच फिर बात की उसने कि उसकी इच्छा होती है कभी कभी वो बात करता है, क्योंकि बड़े घर का लड़का है
जी,
बाप चीफ मेडिकल ऑफिसर है, माँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक सब्जेक्ट की कॉलेज में, तो उन्हें लज्जा भी आती है, एक ही लड़का है, कभी कभी कहता है कि मैं छोड़ूं लेकिन छूट नहीं पा रहा है, जैसे उस व्यसन ने उसको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि मनुष्य अपनी शक्तियों को भूल गया है। तो इसमें ही राजयोग बहुत मदद करता है, जो मनुष्य को उसकी शक्तियों का ज्ञान कराता है। देखिए, मैं सदा एक बात से सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे अंदर ही, हमारे ब्रेन में ही अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत ज्ञान का भंडार है, सोया रहता है। इसलिए हम छोटी छोटी चीजों के पराधीन अपने को पाते हैं कि हम बुरा बोलना नहीं चाहते पर बोल लिए फिर पछता रहे हैं, हम गुस्सा करना नहीं चाहते पर बार बार हो रहा है फिर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, भाई हमने आपको बोल दिया। इसके लिए ही हमें शक्तियों की जरूरत होती है। तो राजयोग से परमात्म शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं और हमारी आंतरिक सोई हुई शक्तियां जगने लगती हैं। इसलिए राजयोग का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर ये सब थोड़ा थोड़ा भी राजयोग सीखेंगे और परमात्मा से सर्वशक्तिवान है, उनसे इनका थोड़ा भी कनेक्शन होगा, दो चार मिनट भी, तो इनमें शक्तियां आएंगी। और दूसरी चीज ये है, एक अवेयरनेस सभी मनुष्यों को दिलानी बहुत जरूरत है कि हम देवताओं की संतान हैं, हम देव कुल के हैं, ये बहुत जरूरी हो गया है। हम अपनी महानताओं को भूल गए, वेस्टर्न कल्चर के पीछे पागल होकर घूम रहे हैं, वहां भी तो युवक ये करते हैं, वहां भी तो ये करते हैं, लेकिन वहां के युवकों की मनोस्थिति का जो बुरा हाल है वो इनको पता नहीं है। इसलिए हमारी कल्चर बहुत महान थी, हम देव सभ्यता के लोग हैं भारत वाले, हम उसकी अवेयरनेस सबको दिलाएं, तो राजयोग में ये सब पता चलता है, तो देवत्व जागृत हो जाता है और इन बुराइयों को छोड़ने की शक्ति आ जाती है।
मतलब राजयोग का अभ्यास इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा कि व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर पाए और हमेशा के लिए इन चीजों से मुक्त हो पाए। और रता जी, मैं यहाँ जब देखता हूँ लाखों भाई बहने जो ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, इन चीजों से मुक्त हैं और मुक्त ही हैं। एक बार शायद उन्होंने छोड़ा है तो अब छोड़ ही दिया है, अन्यथा बाहर ये होता है कि लोग छोड़ते हैं फिर से एक दो मास के बाद लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो मुक्त हुए तो मुक्त हुए, शायद ये राजयोग का ही बल है।
कहीं भी किसी को सिगरेट की खुशबू बदबू नहीं आई होगी, कहीं भी किसी को पान थूकते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, संपूर्ण स्वच्छता यहाँ दिखाई देती है। न कोई सिगरेट पी रहा है, न कोई पान चबा रहा है, न कोई इधर उधर थूक के गंदगी कर रहा है, न कोई इधर उधर कुछ फेंक रहा है। तो सचमुच राजयोग के बल से सभी ने अपने व्यसनों का त्याग कर दिया है और एक दूसरे के प्रति दृष्टि भी बहुत निर्मल हो गई है, सुखदायी दृष्टि, आत्मिक प्रेम से भरी हुई दृष्टि, सब अपनेपन से एक दूसरे को निहारते हैं, तो वातावरण में बहुत ही एक सूदिंग एटमोस्फेयर वहाँ दिखाई देता है, बहुत मन को खींचने वाला।
जी 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 जी, चलिए सुंदर है। दादा जी, मैं अब मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको, और आशा करते हैं कि ये स्वच्छता बाहर और अंदर की जल्दी ही पूरे भारतवर्ष को संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ बनाए। दादा जी, पहला मेल मैं ले रहा हूँ, ये हमारे पास आया है दीपिका सुब्बा जी का, और ये पालमपुर से लिख रही हैं। ये कहती हैं कि माई लाइफ वॉज टोटली सैटर्ड वेन आई लॉस्ट माई ओनली सन ऑन 9th July 2014। Then one day, while watching Peace of Mind channel, I emailed my problem to BKPMTV. They suggested me to join nearby Rajyog Center at Palampur. Then my husband took me there and now my life has changed. Every day we read Murli and try to implement in our life. Daily I do receive a spiritual message from PMTV and watch Samadhan episode. I really want to thank Peace of Mind channel for giving me peace of mind. You people are really doing a great job. Thank you from the bottom of my heart. Deepika Subha ji, Palampur se.
बहुत बड़ी चीज थी ना।
जी जी।
बच्चे की मृत्यु हो
जाए। वो भी एकमात्र।
हाँ। जी। मनुष्य को लगता है जीवन अंधकार से भरपूर हो गया, अब कोई नहीं, किस लिए जिए। बहुत उदास हो जाती हैं माताएं और उनके फादर, शोक छाया रहता है, तो बहुत बड़ा जैसे इन्हें तो जीवन दान मिल गया ना, क्योंकि किसी की भी मृत्यु को तो लौटाया ही नहीं जा सकता, और मृत्यु के बदले में ये था दुख मनुष्य को मिल जाता है। तो हम तो इन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे कि ये भाग्यवान हैं जो समय पर इनको ऐसा साथ मिला और इन्होंने पीस ऑफ माइंड प्राप्त की और अपने जीवन को सुखी बना दिया।
प्रति जी, न केवल इनकी ये घटना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ ऐसी दुखद घटना हो जाती है, व्यक्ति समय पे यदि उनकी मृत्यु होती है तब तो उसे सहज स्वीकार कर लेता है, लेकिन ऐसी अकाली जब मृत्यु होती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है घर में और स्पेशली माँ को। क्या विशेष अभ्यास ब्रह्म कुमारीज में कराया जाता है, जैसे कि दीपिका जी ने ऐसी शांति प्राप्त की, क्या ऐसा अभ्यास सभी लोग केंद्र पे आके कर सकते हैं या केंद्र के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जाती है?
हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें मृत्यु के उपरांत एक 7 डेज कोर्स देती हैं वहाँ जाकर, जैसे भागवत सप्ताह होता है ऐसे ये ईश्वरीय ज्ञान का सप्ताह चलता है वहाँ, क्योंकि दुख भरा माहौल हो जाता है तो कोई ना कोई उनके ब्रह्मा कुमारी से जुड़े ही रहते हैं, वो अरेंज करा देते हैं भाई बहने यहाँ आए और एक शांति सबको हो, माहौल में जो गमगीनी है, जो दुख भरा एकदम माहौल हो गया है, उससे सबको निजात मिले, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद किसी को वापस नहीं लाया जा सकता है, लोग रोते ही रहते हैं, तो इसके बाद बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। इसलिए ये जो ईश्वरीय ज्ञान का सप्ताह है ये मृत्यु के बाद सभी को कराना चाहिए। क्योंकि मृत्यु तो होती रहती है, कोई परिवार ऐसा नहीं जिसमें किसी की मृत्यु ना हो। तो इससे कई लोगों को ईश्वरीय ज्ञान भी मिल जाता है, कई राजयोगी बन जाते हैं और कई का जीवन इसी तरह सुख शांति से भरपूर हो जाता है। राजयोग में सचमुच जब हम आत्मिक ज्ञान देते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये देह ये तो वस्त्र की तरह है और मृत्यु अर्थात आत्मा ने ये वस्त्र उतार दिया। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये हमारे कुछ काल के नाते होते हैं जो कर्मिक अकाउंट के कारण जुड़े रहते हैं। जब हमारा कर्मों का खाता पूर्ण हो जाता है तब खेल पूरा हो जाता है। अभी अभी एक माता और आई मेरे पास, उनकी भी कहानी यही थी। दोनों आए पति पत्नी, हमारे घर में एक बच्ची है 13 साल की है और जब से जन्म लिया बस कुछ समय के बाद से ही उसको ब्लड चढ़ रहा है लगातार, पैसा बहुत खर्च हो रहा है और अब वो बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी है, सब पे बहुत गुस्सा करती है। तो मैंने तो हंसी में कहा कि तुमने कर्ज लिया पिछले जन्म में, इसका दिया नहीं था, अब ब्याज सहित लेकर जाएगी, जितना दिया उससे ज्यादा लेकर जाएगी और फिर ये चली जाएगी। देखो अब उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ब्लड चढ़ता रहता, न जाने ब्लड में किसके क्या क्या होता है, वो इरिटेट रहने लगी, शांति नष्ट हो गई है। तो घरों में शांति का माहौल बनाएं और इस कर्म की गति को समझ लें कि जब ये पूर्ण हो जाती है कोई मनुष्य किसी के पास एक क्षण भी अधिक नहीं ठहर सकता है। तो मृत्यु के सत्य को स्वीकार भी करेंगे और आत्मिक ज्ञान से अपने को चित्त को शांत भी करें।
प्रताप जी, दूसरा मेल हमारे पास आया है, ये कहती हैं कि ओम शांति सूर्य भाई जी, आई लाइक वॉचिंग योर प्रोग्राम एवरी डे एज योर वर्ड्स गिव सूदिंग फीलिंग टू द सोल। आई हैव अ प्रॉब्लम, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर गाइडेंस टू गेट रीड ऑफ इट। आई एम हैप्पीली मैरिड, माई प्रॉब्लम, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फोबिया विच आई माई सेल्फ डोंट नो वॉट फोबिया इट इज एंड वाई इट कम्स, but because of this phobia I have lost my peace and it is very disturbing. It is spoiling my mental peace and I am unable to understand how to overcome this. Brother ji, ye Seema ji ne hame bheja hai Gulbarga se.
Dekhiye kuch dar aise hain jeevan mein jiska koi karan samajh mein nahi aayega aur iske karan hote hain purv janmon ke, ya to us vyakti ki mrityu bahut kashtkari hui hai, bahut bhay hua hai mrityu mein, जैसे ऊपर से गिरा दिया गया, किसी धक्का दे दिया और नीचे आते आते इतना भयभीत हो गया मन, उसके बाद मृत्यु हुई, कोई पानी में डूब गया है, एक दो मिनट के बाद उसकी मृत्यु हुई, कुछ और हो गया, बड़ी कष्टकारी मृत्यु, मूलतः मृत्यु का भय, तो एक भय हो गया है। उन्हें सोच लिया ये मनुष्य लोग है ना ये बड़े खतरनाक है, बड़े खराब है, तो एक भय अंदर में समा गया है। इसको समाप्त करने की सिंपल विधि जो हम सबको सिखाते रहते हैं, सवेरे उठते ही ये 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, बस ये सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ये अभ्यास 21 दिन तक इन्हें अवश्य करना है। दूसरा अभ्यास इन्हें करना है, मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं तो मरती ही नहीं, और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरे कर्मों का खेल था, किसी ने मुझे कष्ट दिया मैं उसको क्षमा करती हूँ, शांत हो जाओ सब, क्षमादान करे और ये लिखेंगी तो इनका चित्त शांत होगा और ये जो फोबिया इनके अंदर भय बढ़ गया है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
प्रताप जी, कई बार जैसे एक अनिश्चित स्थिति रहती है, सब कुछ सामान्य है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा मन विचलित रहता है और जैसे ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज है। संभवतः बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो समझ नहीं पाते कि मेरा मन क्यों बेचैन है,
करोड़ों के साथ।
तो क्या सबका कारण यही है ब्रदर जी, आपने बताया अलग अलग?
नहीं, सबके अलग अलग कारण होते हैं। कभी वही व्यक्ति उसके परिवार में है जिसने उसको कष्ट दिया है, अब सबकॉन्शियस माइंड उसको देख रहा है, उसको बाहरी रूप से पता नहीं ये वही है, वो उसे देखना ही नहीं चाहता, उसको देख देख कर वो दुखी है। अब वो उसके अपने घर में हो, मान लो उसका वो बच्चा बनकर ही आ गया हूँ, अब उसे प्यार करना है, वो प्यार कर नहीं सकती, लेकिन प्यार करना है बच्चे को और सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर रहा है। ऐसी घटनाएं बहुतों के जीवन में हो रही हैं, और भी किसी के अपने ही अंदर में कोई विशेष मनोविकार काम कर रहा है, उसके चित्त को शांत नहीं होने दे रही, किसी के मन में कोई अतृप्त इच्छाएं बहुत काम कर रही है। आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि बहुत सारी मनुष्य को इच्छाएं रहती हैं, तृष्णाएं, और वो उन्हें पूर्ण नहीं कर पाता, वो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ी हुई हैं, किसी को माँ बाप से अच्छी फीलिंग नहीं हुई है बचपन से ही, ये बहुतों के केस होते हैं। माँ बाप ने पालना ही नहीं की उस तरह की बच्चों की, या माँ ने लड़के और लड़कियों के बीच में बहुत भेदभाव रखा है, लड़कियां उसको नोट करती रही हैं और अंदर ही अंदर घुटती रही हैं। ये बहुत सारे कारण अलग अलग होते हैं मनुष्यों के साथ जो उन्हें बेचैन रखते हैं। हाईली एजुकेटेड होते भी जो तृप्त नहीं हो पाते, जिनका जीवन खुशियों से बहुत दूर नजर आता है, ये चारों ओर हम देख सकते हैं।
जी जी, तो कैसे मुक्त हों भ्राता जी?
ईश्वरीय ज्ञान बहुत बड़ी चीज है जो मनुष्य को ठीक से सोचने की कला सिखाता है। ईश्वरीय ज्ञान माना ही हम ये सीखते हैं कि हम कैसे जिएं, हम कैसे लोगों को क्षमा दान दें, हम अपने एटीट्यूड्स को कैसे पॉजिटिव करें, हम अपने बिहेवियर को लवफुल करें, हम बहुत लविंग हो जाएं, हम कामनाएं छोड़ दें, ये हमें प्यार करें, ये हमें सम्मान दें, ये सब हमारे ईश्वरीय ज्ञान में बहुत सिखाया जाता है।
जी जी।
और ये जो आत्मिक ज्ञान है जिससे हम बॉडी लेस होने की प्रैक्टिस करते हैं, उससे चित्त बहुत शांत होता है, तो शक्ति भी आती है और एक गाइडलाइन भी मिलती, ऐसे जियो। हो क्या रहा है संसार में कि मनुष्य को ये पता नहीं चल रहा है कि गलती कहाँ हो रही है, वो दूसरों की देखता रहता है, ढूंढता रहता है। ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद, अरे तुम ये जो सोच रहे तो यही तो गलत था, तुम जो इस तरह बोल रहे तो यही तो परेशानियों का कारण था, तुम्हारा जो ये एटीट्यूड था इसके लिए उसी से तो तुम दुखी हो रहे थे। चेंज मनुष्य अपने में कर लेता है
जी जी।
और इससे सब कुछ ठीक हो जाता है।
प्रति जी, एक महत्वपूर्ण बात से आपने अंत किया है। सचमुच यदि कोई डॉक्टर ठीक से डायग्नोज ना कर पाए कि वास्तव में कारण क्या है बीमारी का, तब तक वो सही सही दवा नहीं दे पाता और पेशेंट भी ठीक नहीं हो पाता। और हम खुद ही अब अपने डॉक्टर बने और डायग्नोज करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो शायद बीमारी दूर हो जाएगी। इस सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है बाहर और अंदर की स्वच्छता की, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अंदर यदि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मन बहुत अशांत रह रहा है, बेचैन रह रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंदर कोई खामी है, कोई कमी है जिसे हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तलाश नहीं पा रहे हैं। और जैसे एक मोटी सी बात है, यदि बाहर गंदगी होती है, कचरा होता है, तो भ्राता जी भी कह रहे थे वहाँ बदबू होने लगती है, वहाँ जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, मच्छर मक्खी पैदा हो जाते हैं, बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि वैसी ही गंदगी, दूसरों की गंदगी, अपनी गंदगी अपने अपने अंदर रखा हुआ है, तो वास्तव में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, बहुत सारे जर्म्स पैदा हो सकते हैं। इसीलिए इस विषय पे सचमुच बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। आगे भ्राता जी से हम प्रकाश लेते रहेंगे कि कैसे अंदर की स्वच्छता का एक अभियान हम चलाएं, ताकि न केवल स्वच्छ भारत बने लेकिन स्वच्छ इंसान भी बने, स्वच्छ भारतीय बने, और हम सचमुच अपने जीवन का संपूर्ण रूप से आनंद ले सकें। इस विषय पर गहराई से विचार कीजिएगा, आगे भी इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।